वसुंधरा को उसके इस घर में कोई इज्जत नहीं थी और अनेक वर्षों से वो इसी तरह अमरीश का रूप देखती आई थी। अमरीश विदेश में रहकर भी अनेक लड़कियों के साथ अनगिनत रिश्ते बनाता था। वसुंधरा इस बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने वीर रायचंद को पालपोसकर अपना सहारा बना लिया था। लेकिन अब अमरीश ने आकर वीर को भी उससे दूर कर दिया था। अब वसुंधरा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और घूम फिरकर उसके दिमाग में अगर कोई नाम चल रहा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया। दूसरी ओर 30 से 35 मिनट बाद आस्था की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। आस्था की आंख जैसे ही खुली, उसने अपनी आंखों के सामने सबसे पहले अरमान सिंघानिया का चेहरा देखा। अरमान को अपनी आंखों के सामने देखकर आस्था पूरी तरह कांप गई। वो सोफे पर सिमटकर कोने में बैठ गई और बोलने लगी,
नहीं, मुझसे दूर रहना प्लीज, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे खून खून लगा हुआ है तुम्हारे हाथों में, जाओ मेरे सामने से जाओ।
आस्था अरमान को देखकर बुरी तरह घबरा रही थी। अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि वो इस तरह से आस्था को खुद से डरते हुए नहीं देख सकता था। आस्था ने अपने चेहरे को पूरी तरह छिपा रखा था। उसे अरमान से उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी नानी माँ अरमान की परवाह किए बिना तुरंत आस्था के पास जाकर बैठ गईं और उसका सर पकड़कर उसे सहलाते हुए बोली,
शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, मैं हूं तेरे पास, मेरी गोरी, मैं हूं तेरे पास, शांत हो जा।
क्योंकि आस्था बिल्कुल उसी तरह डर रही थी जैसे उसके माँ बाप की मौत हुई थी। आस्था इस तरह घबरा रही थी और कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आस्था को एक बार फिर पैनिक अटैक ना आ जाए। जब से अरमान ने आस्था का ट्रीटमेंट शुरू किया था, साथ साथ डॉक्टर की पूरी टीम वहां तैयार करके रखी थी और एक मिनी हॉस्पिटल खुलवा दिया था, तब से आस्था को पैनिक अटैक काफी कम आते थे। लेकिन आज अरमान का इतना भयानक रूप देखने के बाद आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे इस वक्त अरमान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरमान आस्था की ओर देख रहा था और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसका पारा बेहद बढ़ चुका था। तभी अरमान ने अचानक एक आईब्रो उठाते हुए आस्था की ओर देखकर बोला,
मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, अगर आपने अभी और इसी वक्त डरना या पैनिक होना बंद नहीं किया तो मैं इस बंदूक से खुद को गोली मार लूंगा।
अरमान ने जल्दी ही एक बंदूक अपने माथे से सटा ली थी। आस्था ने ये देखते ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और बड़ी बड़ी आंखें करके अरमान की ओर देखने लगी। हॉल में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी एकदम पत्थर के जैसे जम चुके थे। दादाजी अरमान का इस तरह का पागलपन देखकर पूरी तरह से हैर उठे थे। कहीं ना कहीं उन्हें इसी बात का डर था कि अरमान अपने पागलपन में आगे न बढ़ जाए। अरमान बंदूक लेकर आस्था के सामने बैठा हुआ था और उसने अपने सर पर बंदूक तान रखी थी। वो सीधे सीधे कह रहा था कि अगर आस्था ने डरना बंद नहीं किया या रोना बंद नहीं किया तो अभी और इसी वक्त वो खुद को गोली मार लेगा। टाइगर और मारिया तुरंत एक्टिव हो गए और अरमान के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। आकाश और सुमित सपाट चेहरा लिए अरमान को देख रहे थे। ध्रुव और आहान दोनों की आंखों में बेचैनी थी, वे अरमान को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। आस्था ने अपना थूक निगलते हुए अरमान की ओर देखने लगी थी। उसने भले ही रोना बंद कर दिया था लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त कितना ज्यादा डर था ये अरमान अच्छी तरह नोटिस कर सकता था। साथ ही साथ उसे बीच बीच में हिचकी आ रही थी। भले ही जुबान से वो ना रो रही हो लेकिन उसका दिल इस वक्त बेहद रो रहा था। नानी माँ की तो बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से अरमान सिंघानिया उन्हीं के सामने, अपनी नातिन के सामने खुद को मारने की धमकी दे देगा। वो डरती हुई आस्था की ओर देखकर समझाते हुए बोली,
आस्था बेटा प्लीज रोना बंद कर दो, दामाद जी खुद को कुछ कर लेंगे।
आस्था बेटा बिल्कुल मत रोना, तुझे अपनी नानी माँ की कसम, एक आंसू मत गिराना, एक आंसू मत गिराना। नानी माँ उस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए वो आस्था को अब रोने के लिए मना करने लगी थी। आस्था अपनी घबराई हुई आंखों से अरमान की ओर देखने लगी थी। भले ही उसने रोना बंद कर दिया था लेकिन अरमान को इस तरह से देखकर उसे और भी ज्यादा डर से रोना आ रहा था। लेकिन फिलहाल खुद के इमोशन पर कंट्रोल करते हुए वो अरमान की ओर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगी थी। तभी अरमान ने बंदूक टाइगर की तरह फेंक दी और आस्था के कंधों पर हाथ रखकर उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया था। उस वक्त उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद अरमान ने थोड़ी देर आस्था के सर को सहलाने के बाद खुद से दूर किया और उसकी ओर देखकर बोला, आपको इस तरह से मुझे बिना बताए कहीं जाना नहीं चाहिए था, आपने गलती की है मिसेस सिंघानिया, अरमान ने बिल्कुल सपाट लहजे में ये कहा। आस्था घबराकर तुरंत दादाजी की ओर देखती है। दादाजी ने तो खुद अपना सर झुका रखा था। दादाजी ने पहले ही बता दिया था कि वो उनसे पूछ कर गई थी, लेकिन अरमान का ये मानना था कि आस्था को सिर्फ अरमान से परमिशन लेनी चाहिए थी और किसी से नहीं। रश्मि, रौनक, राधिका ये तीनों भी सर झुकाकर अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सुमित राधिका को घूर रहा था, मानो अभी उसे जलाकर राख कर देगा। वो सीधा राधिका के पास आकर उसकी बाजू को कसकर पकड़कर बोलता है, जरूर ये इसी के दिमाग का आइडिया होगा, तुमने ही जिद की होगी ना बाहर जाने की।
हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो जवाब दो,
अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज आस्था को कुछ हो जाता तो।
हाँ बोलो।
सुमित पूरी तरह से राधिका पर बरस रहा था लेकिन आस्था ये नहीं देख सकती थी और सच बताते हुए बोली,
नहीं सुमित भैया, इसमें राधिका दीदी की कोई गलती नहीं है, हमें ही आइसक्रीम खाने का मन था इसीलिए हम आइसक्रीम खाने के लिए चले गए।
और तभी अचानक वे गंदे लड़के वहां आ गए। वे भी आइसक्रीम खाना चाहते थे। हमने उन्हें बोला भी कि वे अपनी अलग से आइसक्रीम खरीद लें, लेकिन फिर उन्होंने आस्था का गला भराया था और वो डरते डरते अरमान की तरफ देखने लगी थी। अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर रखी हुई थी, क्योंकि उसकी निगाहें बार बार आस्था के गले पर जा रही थी। आस्था के गले पर उन लड़कों के हाथों के निशान थे, साथ ही साथ आस्था के होठों के पास से थोड़ा सा खून भी निकला हुआ था, जो कि अब सूख चुका था। अरमान ने जल्दी ही सब पर एक नजर डाली और फटाफट से आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था और कमरे में ले जाने लगा था। आस्था एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। उसने अपना सर अरमान के चौड़े सीने में छिपा लिया था, लेकिन उस वक्त उसे उन लड़कों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर उसे अब अरमान से लग रहा था। अरमान के जाने के बाद नानीमा मन ही मन में आस्था के लिए दुआ करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दादाजी भी अब अपने कमरे में चले गए थे। अब हॉल में सुमित, राधिका, रश्मि, रौनक और ध्रुव, आहान और आकाश बचे हुए थे। टाइगर मारिया ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और फटाफट से वहां से चले गए थे। वहीं आहान रौनक को घूर रहा था और उसके पास से होता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया था। रौनक समझ चुकी थी कि आहान उससे गुस्सा है, पर ना जाने क्यों रौनक को आहान का इस तरह से गुस्सा होना उसे कुछ फर्क पड़ रहा था। वहीं ध्रुव ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा, वो भी अपने कमरे में चला गया। और अब रश्मि डरते हुए आकाश की तरफ देखने लगी थी। आकाश लाल आंखों के साथ रश्मि को घूर रहा था और अगले ही पल खतरनाक स्वर में रश्मि की तरफ देखकर बोला, अपने कमरे में जाओ। रश्मि यही चाहती थी कि कब उसे अपने कमरे में जाने का मौका मिले, और रश्मि इस तरह से भाग गई थी मानो उसके पीछे किसी जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश तिरछा मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चला गया था।
अब सुमित और राधिका इस वक्त हॉल में अकेले थे और सुमित ने आगे बढ़कर राधिका के कंधों को कसकर पकड़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए बोला, आइंदा से अगर तुमने इस तरह की कोई बचकानी हरकत करने की कोशिश की तो इस बार तो तुम कोमा से बाहर आ गई हो। अगली बार अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। ऐसा बोलकर सुमित अपने कमरे में चला गया था और राधिका घुटनों के बल हॉल में बैठकर रोने लगी थी और उसके बाद थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अरमान आस्था को सीधा बाथरूम में ले आया था और आस्था को बाथटब में लिटा दिया था और बड़े ही कोमल तरीके से बहुत प्यार से आस्था को साफ करने लगा था, क्योंकि आस्था के चेहरे पर, उसके गर्दन पर काफी निशान थे और साथ ही साथ उसके होंठों के पास थोड़ा सा खून सूख गया था। अरमान ने आस्था की साड़ी को उससे अलग किया हुआ था। ब्लाउज और पेटीकोट में ही आस्था वहां थी। उसके पेट को, उसकी कमर को, साथ ही साथ आस्था के गले को अच्छे से अरमान बड़े ही कोमल हाथों से साफ कर रहा था। वहीं आस्था ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था, वो केवल अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर ही देखे जा रही थी। अरमान बड़े ही प्यार से आस्था को छू रहा था, साथ ही साथ आस्था अरमान से इसलिए डर रही थी क्योंकि अरमान ने उसे कहा था कि आस्था ने हल्ती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। आस्था को ये नहीं पता था कि उसे अरमान आज क्या सजा देने वाला है, फिर भी उसे अभी से डर लगने लगा था कि न जाने अरमान उसे क्या सजा देगा। आस्था मन में सोच रही थी कहीं अरमान आज उसे अंधेरे कमरे में बंद न कर दे। इसके साथ साथ आस्था ना जाने क्या सोचने लगी थी। जल्दी ही अरमान ने आस्था को अच्छे से नहलाकर उसके बालों को वॉश किया और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया था और अपने आप ही उसे कपड़े पहनाए और फिर आस्था के बालों को बनाने लगा था। और अचानक आस्था के बालों को बनाते हुए अरमान बोलता है, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, आप ठीक तो है ना? अरमान ने बड़े ही प्यार से पूछा था। अरमान ने अचानक से ये पूछा, आस्था के मन में आया कि वो अरमान को बोल दे कि इस वक्त वैसे तो वो ठीक है, लेकिन इस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा है। लेकिन उसने ये बात अपने मन में ही रखी, अरमान के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी आस्था अरमान की ओर देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, वो अरमान जी, हम ठीक हैं, आपने हमें बचा लिया। अगर आज आप टाइम से नहीं आते तो हम अपनी जान दे देते। आस्था ने बड़े ही धीमी आवाज में अटकते हुए कहा, लेकिन अरमान ने सुन लिया था और अरमान की आंखें आस्था की बात सुनकर सर्द हो गई थी। फिर उसके बाद उसने आस्था से कोई भी सवाल नहीं किया और अच्छे से उसके बालों को कोहू करने के बाद अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाया और उसके माथे को चूमकर उसे आराम करने को कहकर वहां से बाहर चला गया था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने राहत की सांस ली थी और वो बेड से उठी और अपने आप को आईने में देखने लगी थी। वाकई उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर काफी निशान थे, लेकिन अगले ही पल आस्था को आईने में अरमान का वो भयानक चेहरा नजर आने लगा था, जिसे देखने के बाद आस्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फटाफट से उसने घबराकर अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथों को रख लिया था और बेड के एक सिरे पर बैठ गई थी और सोचने लगी
क्या अरमान ने आज जो कुछ किया वो ठीक किया? अरमान को इस तरह से उन लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। कितने भयानक तरीके से अरमान जी ने उन लोगों की जान ली है कि चाहे कुछ भी हो, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। आस्था कहीं ना कहीं यही सब सोचते सोचते बेड पर लेट गई। वाकई उसे काफी थकावट हो रही थी। तभी अचानक उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी। अब आस्था शेरान हो गई कि अजीब सी आवाजें कहां से आ रही हैं, और वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक आस्था को एक बार फिर से कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई थी। आस्था हैरान हो गई कि आखिरकार आज हो क्या रहा है, इतनी अजीब अजीब सी आवाजें कहां से आ रही हैं। और तभी अचानक ही आस्था की नजर बालकनी के रास्ते से आते हुए छोटे छोटे से कॉकरोच और चूहों पर पड़ती है, जो कि काफी सारे थे। आस्था ने कॉकरोच और चूहे को देखा तो उसने जोरों से चीख मार दी थी, और वो जल्दी से दरवाजा खोलने की तरह बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन दरवाजा बंद था। वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ अरमान के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। अब आस्था पूरी तरह से घबरा गई कि अचानक से इतने बड़े शानदार घर में चूहा और कॉकरोच कहां से आ सकते हैं। आस्था का डर के मारे बुरा हाल था।